శ్రీ పండర్పురు ధామకి, శ్రీ భూవైకుంఠక్షేత్రకి హితాయి గౌరప్రిమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. హిందీ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ హిందీ 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 ఠీక్ హరే కృష్ణ. సో ఆప్ సబ్కా శ్రీ పండర్పూర్ ధామ్ మే స్వాగత్ హై. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. తో పండర్పూర్ క్షేత్ర జో హై ఉస్కో వైకుంఠ ధామ్ మనా గయా హై. और यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ के विग्रह जो है उसकी स्थापना नहीं की गई है, बाकी सब जगह पर विग्रह जो है वो स्थापन किए गए हैं. लेकिन एक दुर्लभ क्षेत्र है जहाँ पर भगवान का विग्रह जो है वो प्रत्यक्ष भगवान आए हैं, ये इसकी विशेषता है. नंबर वन. नंबर टू, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान सर आवाज़ घूम रहा है इधर कि भगवान यहाँ पर भक्त के लिए दर्शन देने के लिए आते हैं. इस जगह की महिमा ऐसी है कि भक्त भगवान को देखने को नहीं जाता है, भगवान भक्त को देखने को आते हैं. ये बड़ी इस धाम की विशेषता है. वैसे भगवान के दर्शन का महात्म्य भी है, लोग आते हैं, लेकिन इसकी मूल जो कथा है वो भगवान की यहाँ आने की है, भक्त के पीछे पीछे. बाद में भक्त भगवान के भक्त भी उनके पीछे पीछे आए हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान अपने भक्त के पीछे यहाँ पर आए हैं. तो उसकी कथा ऐसी है कि मुचुकुंद नाम का एक देवताओं का सेनापति था, जो देव असुर संग्राम में भगवान के देवताओं के पक्ष में उसने युद्ध किया. और युद्ध करते 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 बहुत हजारों साल बीते, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवता लोग विजयी हो गए. तो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं और बाकी सारे देवताओं ने मिलकर मुचुकुंद को बहुत आशीर्वाद दिया. तो मुचुकुंद ने कहा कि मुझे एक ही आशीर्वाद दो, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ. तो देवताओं ने उनको वरदान दिया, ठीक है तथास्तु. उसने और एक वरदान मांगा कि मुझे ऐसी नींद चाहिए कि अगर बीच में कोई भी मुझे उठाने के लिए आया ना और मैंने उसको देखा तो वो जलकर भस्म होना चाहिए. अभी आप सोच सकते हैं कि वो कितना डेस्परेट होगा सोने के लिए. मैं भी कुछ समझता हूँ उसकी बात. थोड़ा मुझे अनुभव है, क्योंकि नींद में जब मुझे कोई उठाता है बीच में कुछ जोर से बात करता है तो मेरे पे क्या बीतती है मुझे पता है. तो मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ, लेकिन उससे सोचा कि अगर मुझे कुछ ने नींद से उठाया तो वो बस में होना चाहिए. तो उसका भी तथास्तु मिला उसको. तो वो उधर द्वारका के आगे एक पर्वत है, वहाँ जाके गुफा में सो गया. इसका भी एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है. वो द्वारका में महल में नहीं सोया, क्यों? डिस्टर्बेंस होगा ना तो सब लोग भस्म हो जाएंगे. इसलिए जब आपको सोना होता है ना तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर कोई नहीं होगा, ताकि आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं और किसी को तकलीफ भी नहीं। तो वहाँ जाके वो सो गया। अभी उठने का कोई वरदान नहीं मांगा उसने। चलो वो सत्ययुग के लोग हैं तो आप सोचेंगे एक कल्प सोना है मुझे, 43 लाख साल सोना है, या मुझे एक युग सोना है, ऐसा कुछ नो। इतना डेस्परेट था सोने के लिए कि सोने के बाद में कभी उठना है इसका विचार ही नहीं किया उसने। हमारे कॉलेज में हम लोग ऐसा सोते थे कभी कभी, पता है आपको, शनिवार को सोते थे, सोमवार को उठते थे। ऐसे कई वीर थे हमारे कॉलेज में जिनके ज़िंदगी में वो रविवार का दिन आया ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, बहुत युग बीते, बहुत समय बीता, सत्ययुग की घटना है। सत्ययुग कितने साल का होता है पता है किसी को? 17,28,000। फिर त्रेतायुग कितने साल का होता है? 12,96,000। उसका एक आपको ऐसा मत समझना कि मैं जादूगर हूँ सब मुझे ऐसा याद रहता है, उसका सिंपल गणित है, बहुत सिंपल गणित है उसका। 4,32,000 को 2 बार गुनेंगे तो द्वापर युग का समय आएगा, 3 बार गुणित करेंगे तो त्रेतायुग का आएगा, 4 बार गुणित करेंगे तो सत्ययुग का आएगा, सिंपल है। 432 × 2 = 864, 432 × 3 = 1296, सिंपल। तो त्रेतायुग का जो समय था 8,64,000 साल का, उसके अंत में श्री कृष्ण आए। तो श्री कृष्ण भगवान कभी अपने भक्तों की सेवा भूलते नहीं हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूल सकते हैं। तो भगवान को याद था कि मेरा भक्त उधर सोया हुआ है, और सोने से किसी का उद्धार नहीं होता, याद रखना। कभी कभी लगता है कि सबसे बड़ा आनंद जो है वो सोने में है, पर सोने से उद्धार नहीं होता है। तो भगवान को दया थी उसके मन में उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी तो प्रवचन शुरू हुआ है प्रभु जी, प्रवचन के मध्य में और अंत में थोड़ा सा समझ सकता हूँ मैं, लेकिन अभी शुरू हुआ है, अभी जस्ट नाउ बिगिन। तो काल यावन नाम का राक्षस था। जब भगवान मथुरा से द्वारका में शिफ्ट हो गए ना, कब शिफ्ट हुए पता आपको? मथुरा से द्वारका में क्यों और कब शिफ्ट हुए? क्योंकि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार जो है ना वो रेसिडेंशियल एरिया में युद्ध होता था, रहने वाले जगह में। ऐसा नहीं कि भाई युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर सावधान हो रहा है, इधर घर के पास में महल के नीचे रोड पे। तो 17 बार युद्ध होने के बाद में वो सब प्रजा जो है ना वो बहुत परेशान हो गई कि जब आए तभी युद्ध होता है, दिन में रात में कुछ सुरक्षा नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो 18वीं बार भी आक्रमण हो रहा है ऐसी खबर आई, न्यूज़ आई, तो सभी मथुरावासी ने भगवान को बोला भगवान अभी बहुत हो गया, अभी हम लोग नहीं सहन सकते इसको, कुछ करो। तो अभी वो कल आने वाला है, आज ये बातचीत हो रही है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को फ़ोन किया और बोला कि अभी यहाँ से तुरंत समुद्र के पास जाकर, पश्चिम दिशा में समुद्र में जाकर, समुद्र से जगह लेकर वहाँ पर मेरी नगरी को बांधना है आपको, वो भी ओवरनाइट। तो विश्वकर्मा ने पश्चिम अरबी सागर में जमीन, समुद्र को ढकेलकर जमीन प्राप्त किया। 2-4 एकड़ की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, कई हजारों एकड़ होगी जमीन, वो रिक्लेमेशन बोलते हैं उसको। तो विश्वकर्मा ने आधी रात में, मतलब पूरी रात भी नहीं, आधी रात में सब बना दिया पूरा, और सोते हुए मथुरा वासियों को डायरेक्ट शिफ्ट किया। तो वो लोग सोए मथुरा में और उठे द्वारका में, अपने सामान सहित नए घर में। ऐसा होना चाहिए, लाइफ इज लाइक, लाइफ शुड बी लाइक दैट। भगवान के सान्निध्य में रहेंगे, भगवान की प्रजा बन के रहेंगे, तो ये सब चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। भगवान की प्रजा बन के रहना है, भगवान को राजा मानकर भगवान की प्रजा बनकर रहेंगे तो आपका क्षेम कुशल भगवान संभालेंगे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपना स्वामी बन के रहेंगे, अपनी प्रजा में रहेंगे, तो आपका और अपना कर्मों का जो हिसाब किताब है वही ज़िंदगी है आपकी। लेकिन जब भगवान को स्वामी बनाते हैं, हम उसकी प्रजा बनते हैं, हमारा जीवन अलग हो जाता है। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो आया उधर मथुरा में, वो देखा यहाँ पर कोई नहीं है। हरे कृष्णा,
मैचिंग मैचिंग। सो
ये 16-17वां बार, 17वां सत्रहवीं बार आक्रमण हुआ, 17 बार। तो पहले क्यों नहीं बोला घर के बाहर युद्ध हो रहा है, घर के बाहर युद्ध हो रहे हैं, अभी क्या हुआ सेपरेट बोलो? Why only 17th time? Why not 6th time? भगवान की कथा में ना हमेशा मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके गहराइयों में जाना चाहिए, केवल कथा रूप में नहीं सुनना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। क्योंकि 18वीं बार केवल जरासंध नहीं आने वाला था, काल यवन भी आने वाला था। दो राक्षसों का न्यूज़ आई थी कि दोनों आ रहे, तब वो सोचा कि ये भय बहुत भयंकर होगा। महाभारत में जितने योद्धा थे ना, उसके वर्ण हाफ टाइम्स योद्धा अकेला जरासंध लेके आता था। महाभारत में कितने योद्धा थे? 18, 7 और 11, 7 पांडवों के 11 कौरवों के, और इसके 24 हुआ करते थे, 24। हर बार 24 अक्षौहिणी सैन्य लेके आता था वो। इमेजिन, वो घर के बाहर युद्ध हो रहा है तो क्या होता होगा। तो उसमें कालयावन भी आ रहा था। ये कालयावन पिछले युग में, पिछले जन्म में हिरण्यक्ष का पुत्र था। तो वो आया और जरासंध भी आया, तो मथुरा में कोई नहीं मिला, तो किसी ने खबर दिया कि समुद्र में छुप गया है। तो सबसे पहले कालयावन आया वहाँ पर, और कालयावन आया तभी तटबंदी बहुत इतनी मजबूत थी कि वो द्वारका के अंदर नहीं आ पाया, लेकिन बाहर से उसने ललकारा भगवान को, ए छुपे हुए काव, क्या कहते हैं उसको, क्या कायर, बाहर आ जा। तो अकेले भगवान बाहर आए, और कालयावन के सामने अभी सावधान करके युद्ध होने वाला था, तो भगवान ने सावधान करने सामने सामने गए, उससे भगवान जाने लगे। जनरली ऐसा नहीं करते ना, तो जाने लगे। तो कालयावन को लगा, अरे शुरू में डर गया, तो उसका और उत्साह बढ़ा, थोड़े तो डरपोक, हे कायर, हे ग्वाल बाल, मुझसे युद्ध कर, क्यों पीठ दिखा के भाग रहा है। तो भगवान फिर भी जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे वो जा रहे हैं, और भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर भगवान भागने लगते हैं, ऐसा लगता है कि डर रहे हैं भगवान, उसको और उत्साह है, अरे भगवान डर रहे हैं मुझे, मतलब मेरा शत्रु। तो भागते 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 भगवान वो पहाड़ पर चढ़ गए, ये भी पीछे पहाड़ पर चढ़ गया, भगवान रथ से उतरे, वो भी रथ से उतरा, फिर भगवान आगे गए और एक गुफा में घुस गए। उसको लगा इतना डरपोक है कि मुझे डर कर गुफा में छुप गया, तो उसने गुफा में प्रवेश किया, तो देखा तो उस गुफा में वो सो रहा था, कौन? मुचुकुंद। और वो सत्ययुग में सोया था, इसलिए उसके बाल ना ऐसे बढ़ के ऐसे नदी की तरह बह रहे थे, उसके नाखून भी ऐसे 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 बढ़ के बह रहे थे, पैर के नाखून भी ऐसे ऐसे सची देवी के पास ऐसे ऐसे बह रहे थे, ऐसा उसका विचित्र रूप था, बड़ी दाढ़ी लंबी ऐसी बह रही थी, मूछ बह रही थी ऐसी, तो वो सो रहा था ऐसा। तो भगवान ने क्या किया, अपना जो उत्तरी वस्त्र है ना, उत्तरी वस्त्र जो है ना, वो क्या किया, उसके ऊपर डाल दिया, ताकि उसको भ्रम हो कि भगवान ही सो रहे हैं। तो कालयावन लगा, अरे कितना बहुरूपी आदमी, अभी तो जवान था, अभी तो बुढ़ापे का स्वरूप ले लिया और नींद का नाटक कर रहे हैं। तो भगवान आके गुफा में छुप गए, तो ये क्रोध में आया, उसने लात मारी उसको, ए उठ, युद्ध करने के लिए उठ, सोता क्या है। तो उठा उठ गया, और उठ के उसने उसको देखा, देख के वो जल के भस्म हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जहाँ पर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है, वहाँ पर बुद्धि का उपयोग करो ना, युद्ध करने की जरूरत क्या है, या बुद्धि से काम होता तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। भगवान जाके अंदर बैठे, पूरा ड्रामा देखा, तो जलकर भस्म हो गया, तो भगवान सामने आ गए, तो राक्षस का वध भी हुआ, और जिस भक्त पर कृपा करनी थी वो तो कृपा भी हो गई। जैसे ही वो उठा तो उसको पता चला कि मैं बहुत देर के बाद उठा हूँ, तुरंत भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो भगवान ने दर्शन दिया तो मुझको तो भगवान का भक्त है ना, भगवान स्वयं आके दर्शन दे रहे हैं। किस खुशी में दर्शन दे रहे हैं कि इसने मेरे भक्तों की सेवा की है। भगवान को उनकी सेवा की तो भी याद रहता है, लेकिन ज़्यादा याद रहता है जब उनके भक्तों की सेवा हम करते हैं। इसलिए उनके भक्तों की सेवा करते रहनी चाहिए। वो हम भूल जाएंगे कि हमने अभी 12 साल की उम्र में क्या सेवा की थी, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। तो उन्होंने उनको दर्शन दिया, आकर दर्शन दिया, आकर उद्धार किया उसका। तो मुचकुंद इतना प्रभावित हो गया, इतना गदगद हो गया, उसने कहा कि भगवान आपने मुझे यहाँ पर गुफा में आके दर्शन दिया है, इसका अर्थ आप कितने दयालु हो, सब कुछ छोड़कर आप दया दर्शन करने के लिए देने के लिए आए हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने दयालु हो, ये आपका जो दर्शन आप मुझे दे रहे हो वो सबको मिले। अभी आपका दयालु स्वरूप जो है मैं खुद देख रहा हूँ, स्वयं देख रहा हूँ, और कोई नहीं देख रहा है। क्यों ना ऐसा हो कि सब आपको देखें। तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा मैं आपके अगले जन्म में पूर्ण करूँगा। तो वो मुचुकुंद जो है वो पुंडलिक बन कर आया कलयुग में। और कलयुग में जब वो आया तो उसके पिताजी का नाम जानुदेव था और माताजी का नाम था मुक्ताबाई। तो आप में से कौन वो व्यक्ति है जो ये सारे पॉइंट नोट करेगा, उस पर क्विज बनाएगा? तो फिर लोगों का जो नींद का फ्री परमिशन है वो कट हो जाएगा और लोग नोट करने लगेंगे, अरे ये क्विज में आ सकता है। हाँ, तो थोड़ी सी कथा समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, उस पर अभी क्विज पॉइंट्स बनेंगे। इसमें बहुत कथा भी रोचक होती है, तो कथा के बहुत सारे पॉइंट्स आप याद रखते हैं, अरे हाँ ये मुझे भूलना नहीं चाहिए। इसमें क्या क्या आपने टेक्निकल बात की, सत्ययुग का समय, द्वापर युग का समय, त्रेता युग का समय, राजा मुचकुंद, कालियावन, जरासंध, 17वीं बार 18वीं बार, कितने सारे पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, है ना। तो जानुदेव और मुक्ताबाई ये यहाँ पर निवास करते थे, और इनके बालक के रूप में पुंडलिक का जन्म हुआ। ये कथा जो है ना वो पांडुरंग महात्म्य स्कंद पुराण इसमें आती है। हाँ, मेरा कोई क्विज लेता नहीं है, लेकिन मैं याद रखता हूँ। तो फिर वो बचपन में बहुत ऐसे अपराधी भावना के व्यक्ति थे, बहुत माता पिता का अपराध करते थे, सब लोगों का उद्धट उर्मट व्यवहार करते थे। तो फिर उसका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में उसका और स्वभाव ज़्यादा खराब हो गया, और ज़्यादा उद्दंडता बढ़ गई, और माता पिता का इतना अपमान करने लगा। तो बचपन समझो, अभी बचपन में कोई माता पिता का अपराध करता है तो माता पिता बोलते बच्चा है अभी, क्या ठीक है, इतना क्या है। युवा अवस्था में आ गया, विवाह हो गया, बहू लाया, फिर भी वो उद्दंडता बढ़ती गई। तो जानुदेव ने मुक्ताबाई को कहा कि बस अभी हम लोग जाते हैं, अभी और अपना जीवन में हम लोग इतना अपमान नहीं सहन कर सकते हैं, भले भीख मांग के खाएंगे, रास्ते में रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो निकल जाते हैं और कहते हैं हम काशी जा रहे हैं। तो वो एक ज़माना है जिसमें काशी लोग जाते थे जीवन समाप्त करने के लिए, यानी जीवन अंत तक रहने के लिए। तो चले गए, तो इसको भी कुतूहल हुआ, रे काशी क्या है, हमको भी जाके देखना चाहिए काशी क्या है। तो पत्नी को बोला चलो हम काशी जाते हैं, चलो ठीक है चलते हैं। तो उन्हें घोड़ा किया और घोड़े गाड़ी में बैठकर काशी की ओर जाने लगे, और माता पिता उसी की ओर पैदल जा रहे हैं। तो घोड़ा गाड़ी फास्ट जाती है, तो रास्ते में उनको माता पिता उसे धीरे धीरे चलते हुए दिखाई पड़े, फिर भी उन्होंने माता पिता को ध्यान नहीं दिया, देखा और आगे चले गए। बीच में एक आश्रम आया, कुक्कुट स्वामी का आश्रम। कुक्कुट स्वामी, कुक्कुट का मतलब मुर्गा एक्चुअली, और उसका नाम था कुक्कुट स्वामी। उस आश्रम में उन्होंने रात का रैन बसेरा करने के लिए रूम ले लिया और सोने लगे। रात में उनको ना अचानक जाग आ गई, किसको किसको निश्चित ना, पुंडलिक को जाग आई। क्यों जाग आई, उसने देखा कि तीन औरतें जो वैसे सुंदर है लेकिन बहुत निस्तेज और ऐसे काला कलूटा रंग हो गया उनका, लेकिन सुंदर बहुत हैं, लेकिन लगता है कि सुंदर औरतें लेकिन निस्तेज हो गई हैं। वो सर पे घड़ा लेकर आई आश्रम में कुक्कुट स्वामी के, और उस आश्रम को साफ करने लगी, और जैसे वो साफ करने लगी वो तेजस्वी होने लगी, मोर एंड मोर एंड मोर, साफ कर रही है तेजस्वी हो रही है, साफ कर रही है और तेजस्वी हो रही है। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, तो पुंडलिक ने उनको पूछा, हे देवियों आप कौन हो? तो देवी कहती है कि चुप रहो, तुम बड़े अपराधी हो। इसके पहले घटना हुई थी, वो सर रात आने के पहले जब आश्रम में प्रवेश किया तो कुक्कुट स्वामी का दर्शन हुआ, तो कुक्कुट स्वामी को उन्होंने प्रणाम किया, तो कुक्कुट स्वामी ने इनको देखा भी नहीं, दुर्लक्ष करके चले गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुक्कुट स्वामी ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो रात को फिर ये घटना हुई, देवियों को पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा हम गंगा यमुना और सरस्वती हैं, हम साल भर में जहाँ सेवा करते हैं, लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, उनका पाप इकट्ठा 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 करने के बाद हम अपना तेज खो बैठते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो अपना पाप धोने के लिए हम रात को यहाँ पर आते हैं और अपना ही पानी लेकर साफ करते हैं, वापस तेज को प्राप्त करते हैं, पाप से मुक्त होते हैं और चले जाते हैं। ये तू बड़ा अपराधी है, बड़ा पापी है। तो मुझे कुक्कुट स्वामी ने मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया था। तो कुक्कुट स्वामी बहुत माता पिता के भक्त हैं, उन्होंने माता पिता की बहुत सेवा की है, उन्होंने माता पिता का बहुत अपराध किया, इसलिए आपसे बात नहीं की उन्होंने। अभी भी सुधर जा, तेरा भाग्य उज्ज्वल है भविष्य में, अभी भी सुधर जा, माता पिता की सेवा कर। तो पता नहीं बहुत देर, इतना साल अपराध करने के बाद उस रात को उसको क्या अनुभूति हुई, क्या कृपा हुई उसके ऊपर, उसको बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा मैंने ठीक नहीं किया, माता पिता को छोड़कर ऐसे सब अपमान किया, वापस चला गया वहाँ से। वो काशी की ओर जा रहे थे, ये अभी काशी के वापस जा रहे थे, तो उसको रास्ते में माता पिता का मिलन हुआ, चलते हुए आ रहे थे, घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घर पे लेके गया, और फिर वो माता पिता भक्त परायण बन गया, यहाँ पर आया वो अपने घर में, और दिन रात माता पिता की सेवा करने लगा, दिन रात उनके लिए भजन गाने लगा, पैर दबाने लगा, भोजन करने लगा उनका, वो और वृद्ध होते गए और वृद्ध होते गए, सेवा करते गए सेवा करते गए। और उसकी माता पिता की जो भक्ति और सेवा जो है वो प्रसिद्ध हो गई, उसी के जीवन काल में लोग भी जानने लगे कि पुंडलिक जो है वो इतना सुधर गया है कि अभी माता पिता का इतना भक्त बन गया है। और माता पिता उसके वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे वो। लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने की ज़रूरत क्या है, माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कौन से माता पिता की? जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे माता पिता की भजन करने से, पूजन करने से, सेवा करने से वो लाभ मिलता है। तो माता पिता शराबी जुआरी और मांस खाने वाले होंगे, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करने से भगवान की चरण की भक्ति मिलेगी ऐसा गारंटी नहीं है। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता शराबी भी होंगे, पापी भी होंगे और गैर व्यवहारी भी होंगे, तो पुत्र का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करते ही रहे, किसी भी स्थिति में अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन भगवान की कृपा का लाभ तब होता है जब वो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए पुंडलिक की ये कथा जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उनके पिता माता भगवान के भक्त थे। तो फिर उधर क्या हुआ, भगवान ने भी नोट कर लिया कि ये भक्त बन गया है, अभी ये भक्तों की सेवा कर रहा है। तो राधा रानी एक बार द्वारका चली गई भगवान को मिलने के लिए, किसी कल्प की कहानी है। तो वो बहुत दिनों के बाद मिली तो भगवान ने उसको अपने पास में बिठाया और बातें करने लगे। रुक्मिणी का महल था, जब वो एकांत में बैठे थे तो वो रुक्मिणी आ गई, तो रुक्मिणी को देखा अरे राधा रानी के साथ बैठे हैं, तो वो रुक्मिणी नाराज़ हो गई और चली गई और यहाँ पर आके तप करने लगी। तो भगवान बाद में फिर बहुत दुखी हुए कि अरे रुक्मिणी व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। तो उसको ढूंढते ढूंढते भगवान ने बहुत ढूंढा, बोले गोकुल में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ पर भी नहीं मिली। तो फिर वहाँ से वो इसमें इस वन में आए ढूंढते ढूंढते, यहाँ पर आकर रुक्मिणी को मनाया, लेकिन रुक्मिणी बहुत नाराज़ थी, नहीं मानी, उस पेड़ के नीचे बैठ कर तप ही करती रही, प्रार्थना करती, मतलब तपस्या करती रही। तो फिर उसको छोड़कर भगवान पुंडलिक के घर आए। संध्या का समय था, रात्रि होने वाली थी, माता पिता विश्राम करने वाले थे, रात्रि का शयन करने वाले थे। तो दोनों गोद में माता पिताओं को सुलाया था तकिए की तरह, और भगवान के नाम का भजन कर रहा था, कि बीच में चरण दबा रहा था, बीच में सुला रहा था, और दरवाजे की ओर उसकी पीठ थी और माता पिता सामने सोए थे। उतने में भगवान आए और भगवान ने कहा पुंडलिक मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ। पुंडलिक ने पीछे भी नहीं देखा, लेकिन उसको कैसे पता चला पीछे कोई आया है? प्रकाश फैल गया, पूरे घर में प्रकाश फैल गया, तो वो समझ गया। लेकिन फिर भी उसने एक ईंट उठाई और पीछे फेंक दी और बोली, इस ईंट पे खड़े रहो, मैं मेरी सेवा पूरी करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो भगवान उस ईंट पर कमर पे हाथ रख के वेटिंग पोजिशन ऐसा खड़े हो गए, बहुत देर खड़े हो गए। फिर सेवा समाप्त हुई, माता पिता निद्रिस्त हो गए। फिर पुंडरीक ने टर्न किया भगवान की ओर, दरवाजे की ओर, और फिर उनका वार्तालाप हुआ। बहुत सुंदर उसका महात्म्य का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया है पांडुरंग महात्म्य, कैसे वो दिव्य श्रृंगार करके आए थे और कैसे पुंडरीक उनका सवन कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। तो उसी वही बात जो मुचुकुंद ने कृष्ण से कही थी उस गुफा में, वही बात पुंडरीक कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही बात कहते हैं कि इस रात को मेरे माता पिता सोए हैं, पूरा गांव सोया हुआ है, मैं और आप ही हो जहाँ पर जागृत हैं, और मैं ही अकेला आपको देख रहा हूँ कि आप कैसे कृपा से करुणा से कमर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रतीक्षा की आपने, और फिर मुझे आप दिव्य दर्शन दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला इस दर्शन का लाभार्थी नहीं बनना चाहता, मैं पूरे विश्व को इसका लाभ देना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान ने कहा ना, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। उसने वरदान मांगा कि आप यहीं खड़े रहो, आपके चरण कमल का दर्शन लाभ सबको होना चाहिए। तो देखिए कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने तथास्तु कहा, और एक समय आया कि पुंडलिक का देहांत हो गया, लेकिन भगवान वहाँ से नहीं गए। ऐसे नहीं कि भाई ठीक है, पुंडलिक का वरदान था, पुंडलिक जब तक था तब तक मैं खड़ा, पुंडलिक गया मैं भी जाता हूँ। पुंडलिक तो कभी का चला गया, कभी की बात है, ये द्वापर युग की बात है। क्योंकि श्री कृष्ण लीला कर रहे थे ना द्वारका में, वृंदावन में। एक जगह का वर्णन ऐसा है कि धेनुकासुर को मारने के पश्चात भगवान पंडरपुर में आए थे। एक जगह पर वर्णन ऐसा है कि वो द्वारका में थे, वहाँ पर कालियावन का युद्ध हुआ, वहाँ से फिर इधर आए। नहीं, राधा रानी आई, रुक्मिणी पर दुखी हो गई, फिर ढूंढते ढूंढते आ गई। ये कल्प भेद है, तो भगवान वहीं रुक गए। ये इस क्षेत्र की महिमा है। पंडरपुर कैंप में जब आते हैं तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन लोगों को क्या होता है? दर्शन करने के जाना है। तो हमारे कैंप में हम लोग ये प्रचार करते हैं कि जो पंडरपुर को देखने आने वाले जो वारकरी हैं, जो पैदल आते हैं अपने घर से, उनकी सेवा करना इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी सेवा करने वाले को दर्शन देने के लिए पुंडरीक जैसे आए थे वैसे भगवान आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको देखने के जरूर आएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि आप मंदिर जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, तो आप भगवान को देख रहे हो और भगवान भी आपको देख रहे हैं। तो आप भगवान को देख रहे हो नंबर वन, और भगवान आपको देख रहे हैं नंबर टू। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जब भगवान हमको देखते हैं तो उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में अंतर है। हम भगवान को देखते हैं तो यहाँ वहाँ उधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, कुछ चकना चीज़ है तो उसको भी देखते हैं, लेकिन भगवान आपको केवल आपको ही देखते हैं और कुछ भगवान देखते नहीं। क्योंकि भगवान को हम जैसी चीज़ों की आकर्षण नहीं है, जैसे हमको आकर्षण है। हम इधर उधर देखते रहते हैं, भगवान केवल हमको देखते हैं। इसलिए एक अंधे को किसी ने भगवान के मंदिर में जाते हुए देखा रोज के रूप में। तो पूछा, क्यों जाते हो मंदिर में आप, क्या देखते हो तुम, भगवान को देख नहीं पाते हो? बोले, मैं भगवान को देखने नहीं जा रहा हूँ, भगवान मुझे देखे इसलिए जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है वो भाव, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए गोपियाँ हमेशा सज धज कर भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करती थी, ताकि वो हमें देखे और उनको प्रसन्नता हो कि मैं सुंदर दिख रही हूँ। मैं सुंदर हूँ इसलिए नहीं जा रही हूँ, मुझे देखकर उनको आनंद होगा, इसलिए वो सज धज रही है। आज भी बरसाने में मैं देखता हूँ मंगला आरती में कितनी औरतें कितना सारा मेकअप करके आती हैं। तो आपको लगेगा क्या है, गांव के लोग इतना मेकअप क्यों करते हैं, लेकिन हमको उनका बात को भी समझ में नहीं आएगा। वो इतना सुबह उठ के, कम से कम जो देखता हूँ ना मैं मेकअप, कम से कम उनको आधा घंटा लगता होगा वो जो भी कुछ करते हैं अर्ली मॉर्निंग में। मीन जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा भी लगता होगा। कभी कभी होली का उत्सव में वहाँ पर वो किन्नर आते हैं, किन्नर और वो तो इतना श्रृंगार करके आते हैं, मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 घंटे का श्रृंगार रहेगा वो, और वो 5:30 की मंगल आरती में आ जाते हैं, तो कितने बजे उठे होंगे, कितना बजे श्रृंगार करते हैं, फिर वहाँ पर आके नृत्य करते हैं होली के समय, 1-1 घंटा नृत्य करते हैं, इतना मेकअप करके सज सज के आते हैं, पूरा जोड़ा चक 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 पहन के आते हैं, केवल राधा रानी को आनंद हो हमें देखने में, इसलिए आते हैं सुबह। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये भाव कि भगवान हमको देखे, और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो प्रभुपाद के गुरु हैं वो सदैव कहा करते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो जिससे आपको भगवान देखने को आए, हरे कृष्णा, ऐसा कार्य करो जिससे आपको भगवान देखने को आए। What is most important is to not see God, but to act in such a way that He will like to come and see you. And when He will come and like to see you, you may not see Him because He may not be visible. पर कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे निश्चित रूप से हमें वो देखने आ जाए, ऐसा ही एक क्षेत्र है। अभी रुक्मिणी नाराज होकर यहीं पर क्यों आई और काशी क्यों नहीं गई, हिमालय क्यों नहीं गई, है ना? तो उसकी भी कहानी ऐसी है कि ये वन का नाम है दिंडी रव वन, दिंडी रव वन। तो यहाँ पर एक बहुत भयंकर राक्षस था, उसका नाम था दिंडी रव, और उसने देवताओं को बड़ा परेशान करके रखा था। तो सब देवता परेशान होकर इंद्र के पास गए और इंद्र को पूछा उन्होंने, इंद्र को बताया कि हम लोग बड़े परेशान हैं। तो इंद्र भी बड़े परेशान थे, क्यों, इंद्र भी इतना शक्तिशाली था, इंद्र भी कुछ करने के शक्ति में नहीं था। तो इंद्र सब देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए, विष्णु को आराधना की, स्तुति की, तो विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि दिंडी रव से हमको बचाओ। भगवान ने कहा मैं आकर मल्लिकार्जुन रूप लेकर दिंडी रव का वध करूँगा। किस नाम को प्राप्त किया उन्होंने, मल्लिकार्जुन। तो एक राजा थे श्री चंद्र, उसके राज्य में, उसके परिवार में, उसके पत्नी के गर्भ में उसने बहुत तप किया। 1000 स्वर्गीय साल तक राजा श्री चंद्र ने तप किया, और उसके बाद में उसकी उसको भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और उसने वरदान मांगा कि आप जैसा मुझे पुत्र हो। भगवान ने कहा मैं ही आपके गर्भ में मल्लिकार्जुन नाम से जन्म लूँगा, श्री चंद्र के पत्नी के गर्भ में जन्म लूँगा और मल्लिकार्जुन के रूप में आऊँगा। यथावकाश उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको पुत्र हुआ। वो पुत्र बड़ा तेजस्वी था, बहुत वीर था, शत्रुघ्न संपन्न था। तो 20 वर्ष तक उसने अपनी बाल लीलाएँ की, युवा अवस्था में हो गया। तो एक दिन शिकार खेलने जंगल चला गया, तो शिकार खेलते खेलते जंगल में उसको दिंडी रव का मुलाकात हुई और उनका घनघोर युद्ध हुआ। कहते हैं 1000 स्वर्गीय साल तक उनका युद्ध चलता रहा, सत्ययुग की बात है ना इसलिए। तो 1000 साल के युद्ध होने के बाद में मल्लिकार्जुन ने लोह दंड, इसका वजन 120,000 भार था, 1 भार 40 किलो का होता है, ऐसे लोह दंड गदा को उसने उठाया और दिंडी रव के सर पर प्रहार किया, और दिंडी रव की उस समय सर फूट गया और मृत्यु समान, मतलब एकदम वो अर्थात मृत्यु जैसा हो गया। तो जैसे ही वो मृत्यु जैसा हो गया तो उसने हरी 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 पुकारा, बोलो हरी हरी हरी। तो जैसे ही वो मल्लिकार्जुन का प्रहार सुनने के बाद हरी हरी का उच्चारण किया तो साक्षात विष्णु ने भी अवतार लिया और वो भागकर उस मरणासन्न दिंडी रव के पास में उसको गले लगाया, उन्होंने आलिंगन दिया उसको, क्योंकि जो मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है भगवान वहाँ उसको कृपा करते हैं। तो आलिंगन दिया और कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो तात्पर्य में लोकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को पुकारता है उसने जीवन में अगर कितने भी पर्वत समान पाप इकट्ठा किए होंगे वो सब नष्ट होकर भगवान की कृपा होती है और भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। तो उसने कहा कि ये क्षेत्र जो है ऐसा होना चाहिए। ये मैंने कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बताइए ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, कहाँ रेफरेंस था उसका? रुक्मिणी यहाँ पर क्यों आई? प्लीज़ बी अलर्ट, रुक्मिणी जी यहाँ पर क्यों आई? काशी क्यों नहीं गई? हिमालय क्यों गई? उत्तरकाशी क्यों नहीं गई? तो दिलडिर राक्षस ने वरदान मांगा कि ये क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आने पर सबके पाप तुरंत नष्ट होने चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तो आप लोग सब लोग भाग्यवान हो क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो। यहाँ पर केवल आने से ही भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और अगर कुछ बात बचते हैं जिसका नाम है वज्रलेप, कुछ सुना आपने वज्रलेप? चंदन का लेप सुना होगा, तेल का लेप सुना होगा। वज्रलेप का मतलब जानते हो? जो धाम में किया हुआ वैष्णव अपराध है उसको वज्रलेप कहते हैं। वो बहुत भयंकर ताप होता है, जैसे तुमने आपको शरीर पर किसी ने डांबर लगा दिया, डांबर तो निकलेगा क्या? वो चमड़ी को लेके निकलेगा, ऐसा नहीं निकल सकता है। वैसा होता है वज्रलेप। ऐसा पाप भी चंद्रभागा में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और भी एक स्थान है, जगन्नाथपुरी के समुद्र में भी स्नान करने से वज्रलेप नष्ट हो जाता है। गोदावरी रामकुंड में भी स्नान करने से वज्रलेप नष्ट हो जाता है। एड्रेस नोट करके रखो, काम आएगा फ्यूचर में आपको। समुद्र द्वारका का समुद्र, गोमती का किनारा जहाँ गोमती समुद्र को मिलती है, गोमित्री द्वारका समुद्र का मिलन जो है, पानी खारा खारा होता है वहाँ पर, वहाँ पर भी स्नान करने से वज्रलेप पाप नष्ट हो जाता है। ये वज्रलेप के विषय में मैंने द्वारका महात्म्य में ही पढ़ा था, मैंने उधर रामकुंड। ओके, और उसने वरदान मांगा इस स्थान का नाम जो है दिंडीर वन पड़े, मेरे नाम, मेरे पे नाम पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु। उसने कहा इस स्थान का नाम लोह दंड तीर्थ भी पड़े। यहाँ पर जिस लोह दंड का वार मुझ पर किया गया था, उस लोह दंड जो वहाँ पर गिरा हुआ है वो भूमि में लुप्त हो गया, तो उस भूमि को भी उन्होंने कहा कि इसका नाम लोह दंड तीर्थ होना चाहिए। और भी कहा कि सूर्य तीर्थ भी होना चाहिए, क्यों बताया नहीं, लेकिन सूर्य तीर्थ भी भगवान ने हाँ कर दिया। तो दिंडीरव वन, लोह दंड तीर्थ और सूर्यकुंड, सूर्य तीर्थ, ऐसे अनेक नाम प्राप्त हुए। भगवान ने उसको वरदान दिया और भगवान का दर्शन करते करते दिंडीरव का निधन हो गया और वो भगवत धाम चला गया। इसलिए रुक्मिणी जी यहाँ पर आई थी। और कितना बजे? सो इस तरह से पुंडरीक का महात्म्य एक क्षेत्र में है। अभी पुंडरीक जहाँ पर थे वहाँ पर उसका एक भजन भजन भी है, एक स्थली है जो चंद्रभागा के किनारे है, और फिर उसके बाद में आगे विट्ठल जी भगवान हैं, और एक वो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर एक दिव्य ट्रायंगल है, त्रिकोण, उसके एक कोने में पुंडरीक जी है, एक में विट्ठल जी हैं और विष्णुपदी, वही चंद्रभागा शायद। तो ये जो त्रिकोण है ना, ये वास्तव में वो वैकुंठ है, उसको गुप्त वैकुंठ कहते हैं, अदृश्य वैकुंठ। हमारी दृष्टि से हमको वो भी अदृश्य वैकुंठ कहाँ पता नहीं होगा, तो पुंडरीक का जो मंदिर है वहाँ से विट्ठल के मंदिर में जाएंगे तो वो जो रास्ता है वो ट्रायंगल में ही आता है, वहाँ जाने से वैकुंठ में जाने का लाभ मिलता है, ऐसी शक्तिशाली जगह है। चंद्रभागा नदी जो है वो भी बहुत दिव्य है, उसका उगम भीमा शंकर पर्वत पे होता है, भीमा शंकर पर्वत, वहाँ उसका नाम भीमा नदी है, और वो जो वहाँ से नीचे आती है पंडरपुर की ओर आती है तो दक्षिणागामी हो जाती है, दक्षिण अनुगामी हो जाती है, यानी जहाँ से आती है वो दक्षिण दिशा में टर्न हो जाती है। कोई भी नदी जब अपनी प्रवाह में दक्षिण की ओर टर्न करती है वो जगह बहुत 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 पवित्र हो जाती है। वहाँ पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, वहाँ पर श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो वही इम्पोर्टेंस गोदावरी को रामकुंड पे है, वहीं पर वो पश्चिम से दक्षिण में टर्न कर रही है, इसलिए राम ने भगवान ने वहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया था। तो वो जो टर्न होती है तो वो चंद्राकार चंद्रकोर के आकार में हो जाती है। चंद्रकोर का मतलब क्या है हिंदी में? चंद्र की, चंद्र की कला होती है ना, वो जैसे ऐसे, हाँ, तो वो चंद्र के आकार से जैसी हो जाती है, इसलिए उसको नाम दिया चंद्रभागा। भीमा नदी जब ऐसे आकार में टर्न लेती है तो उसका नाम पड़ा है चंद्रभागा। चंद्रभागा इतनी इतनी पावरफुल है कि उसके किनारे पे अनेक करोड़ों संतों ने रेती के कण का रूप लिया है। तो चंद्रभागा में जितने किनारे में रेती के कण हैं, उस संत लोग जो हैं वो भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए और तप करने के लिए वहाँ पर रेती का कण बैठ के विराजमान है। उसकी और भी एक कथा है कि जब चंद्र ने, बहुत सारी कथाएं एक साथ बता रहा हूँ, बहुत सारे क्विज वाले पॉइंट्स पैदा हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। चंद्र ने एक बार, मैं क्या बताएं, 9th कैंटो पढ़िए आप, नवम स्कंद। चंद्र को जब देखते हैं ना हम लोग, तो ये अगर कथा पता होगी तो चंद्र को देखने पर आपको लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, तो हमारी भी ऐसी अवस्था होगी। अपने गुरु की पत्नी को उसने छीना, उसको प्रलोभित किया, उसके साथ संग किया और बुद्ध का जन्म हुआ। और बुद्ध जब उसके पेट में था तो बृहस्पति को पता चला कि मेरी पत्नी, उसका जो है चरित्र भंग हो गया है, तो पूछताछ की तो वो नहीं बता रही थी। फिर चंद्र की पूछताछ की तो भी नहीं बता रहा था। फिर किसी ने मध्यस्थी किया और बोला, बोलो अभी क्या है। तो चंद्र ने कहा, ठीक है, ये मेरा ही बालक है। तो बालक का जन्म हो, बड़ा तेजस्वी था। तो बालक को देखकर फिर अभी कौन उसका आधिपत्य लेगा। तब बृहस्पति भी चाहते थे कि कोई बात नहीं, इसका पुत्र, लेकिन मेरी पत्नी का पुत्र तो है ना, मैं चाहता हूँ इस तेजस्वी पुत्र को। और चंद्र भी चाहते थे। इस तरह से थोड़ा सा झगड़ा हो गया उसमें। तो वो सब चक्र में ये सब अपराध की वजह से बृहस्पति को चंद्र ने, अच्छा बृहस्पति ने चंद्र जी को श्राप दे दिया कि तुमको क्षय हो जाए, यानी आज के ज़माने में टीवी हो जाए, उसको कहते हैं राज यक्ष्मा रोग, राज यक्ष्मा हो जाए। तो तब से चंद्र को टीवी हो गया। और चंद्र फिर धीरे 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 पतले 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 दुबले होते गए। इसलिए वो आकाश में, जब पूर्णिमा होती है ना, उसके बाद में आप चंद्र का दर्शन करेंगे, एक एक दिन आपको पता चलेगा चंद्र क्षीण होते जाते हैं। वो व्यभिचार का लक्षण है, उसका पाप का फल है वो। इसलिए वो फिर, वो चंद्र ने बहुत दुख किया, बहुत पश्चाताप किया, तो शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी ने उनको नर्सिंग किया, यानी शुश्रूषा की, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्रमौलेश्वर। चंद्रमौलेश्वर जो है वो उड़पी में विराजमान है, उड़पी में रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर चंद्र को बहुत शुश्रूषा की और फिर उनको वरदान दिया, ठीक है तुम पुनः तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। फिर वो अमावस्या के बाद में पुनः बढ़ने लगे, पूर्णिमा, फिर वो अमावस्या टू पूर्णिमा, पूर्णिमा टू अमावस्या, ये यात्रा जो है जीवन भर चल रही है। एक अपराध की वजह से लाइफ टाइम के लिए वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो वो चंद्र जो है, उनको भी आदेश दिया गया था कि आप सूर्य तीर्थ पे जाकर तप करो और चंद्र बाबा में स्नान करो तो आपके पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो चंद्र ने भी यहाँ पर तपस्या की है चंद्रभागा के किनारे, और चंद्रभागा में स्नान किया है और तप किया है। यहीं पर शंकर भगवान ने एक पैर नंदी पर रखते हुए, एक पैर जमीन पर रखते हुए त्रिपुरासुर का वध किया था। वो कथा बड़ी लंबी कथा है। त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था जो त्रिपुर के रूप में था, तीन पुर आकाश में, व्यक्ति व्यक्ति नहीं था वो, ऐसे तीन महल थे, तीन पुर नगर थे आकाश में, तीन नगर, और उसमें से बाण निकलते थे, शस्त्रास्त्र निकलते थे और देवताओं परेशान हो जाते थे। तभी ऐसे व्यक्ति का वध कैसे करें जो दिखता ही नहीं है, तो खिड़की से बाण आ रहा है, दरवाजे से बाण आ रहा है, सामने से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, वध किसको करें। तो फिर भगवान ने शंकर जी को बुलाया और भगवान ने शंकर जी को अपना त्रिशूल, अपना धनुष दिया। एग्जैक्टली याद है, त्रिशूल दिया, त्रिशूल तब भगवान ने शंकर जी को दिया। और फिर एक पैर नंदी पर रखते हुए, एक पैर जमीन पर रखते हुए उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। और त्रिपुरासुर का वध करते समय जो उनको स्वेद हुआ, स्वेद का मतलब क्या होता है यमुना भक्ति, स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना, जो श्रम हुआ, जो पसीना आया, तो वो पसीना जब एकत्रित हुआ तो चंद्रभागा का निर्माण हुआ। तो चंद्रभागा नदी जो है वो शिव जी का स्वेद जल है, दिव्य जल, जो वहीं पर्वत पर उनका युद्ध हुआ था, भीमाशंकर पर्वत पर, तो वहीं से वो नदी का आरंभ हुआ था। फिर वहाँ से बहते हुए पंडरपुर में आती। देखो एक क्षेत्र की कितनी कहानियाँ हैं, ठीक है, कितना याद रहेगा तो काफ़ी है, आगे की कथा बाद में बताएंगे। किसी के प्रश्न है कोई? Anybody has any question? भगवान के सामने जब हम दर्शन करते हैं तो एक ही भाव होना चाहिए, आपकी सेवा में लगाइए, आपका दर्शन हो ना हो आपकी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा में रत होना इसका अर्थ होता है कि परमानेंट हमारा उनका संबंध हो जाता है, यहाँ तक कि भगवान हमसे बद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्णा गेट्स बाउंड विद अस, हम उनको हमारे प्रति वश कर लेते हैं, बद्ध कर लेते हैं। इसलिए भगवान के सामने खड़े होकर कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, एक ही मांगना चाहिए, किम करह। किम करह का मतलब क्या होता है, क्या करूँ आपके लिए, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, यही केवल मांगना चाहिए बस। क्योंकि बाकी सब मांग आप मांग सकते हो और आपको मिलेगा भी, लेकिन जो भी मिलेगा वो समय के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा एक समय पर। मुझे आप बोलेंगे मुझे पुत्र चाहिए, ठीक है पुत्र मिल गया, उसके बाद में फिर लोगे क्यों जन्म दिया है इसको, कि कितना कष्ट हो रहा है, कितना अपराध कर रहा है ना। गाड़ी मांगी समझा आपको, गाड़ी मिल गई आपको, बाद में वो गाड़ी को उसने पत्थर मारा, कांच टूट गई, टायर पंक्चर हो गया, बोले बाप रे क्यों गाड़ी लिया मैंने, इतना कष्ट हुआ। इसका अर्थ क्या, वही गहने मांगते हो, कोई गहने चाहिए, गहने मिल गए करोड़पति, करोड़ की कीमत के, तो फिर किसी ने चोरी कर ली है तो दुख हो जाएगा, कहीं गुम हो गया तो दुख हो जाएगा, फिर वो पॉलिश करना पड़ेगा, उसको कभी ख़राब देखेगा, बाद में वो उसको पहन के बोर भी हो जाएगा, अभी नए चाहिए आपको। तो ये सब जो मांगे हमारी है वो प्रुप्त हो सकती है, भगवान कर भी करेंगे भी, लेकिन वो आपको चिरंतन काल तक सुख नहीं देंगे, लंबे समय तक गारंटी नहीं है कि वही मूल्यवान महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण वस्तु आपको सुख देगी। इसलिए वही चीज़ मांगो जो आपको चिरंतन काल को सुख देगी, और वो है भगवान की कृपा, और वो है भगवान की सेवा। जब भगवान की सेवा मिलेगी ना आपको तो कभी वो करते हुए आपको बोर नहीं होगा, अरे क्या वही रोज़ फूल की माला बनानी है, देखो मंदिर में जाकर देखो वही माता बरसों तक वही फूल बिन रही है, वही फूल की वही वही माला रोज़ बना रही है। लेकिन कहते नहीं है माता जी फूल तो चेंज करो अभी, कितना वही वही फूल की माला बनानी, ऐसा कभी बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते हैं, बैठे रहते हैं बनाते रहते हैं, क्योंकि उसमें इतना आनंद है, दिव्य आनंद है, बढ़ता हुआ आनंद है, वो भी कम होते हुए आनंद नहीं है। हाँ तो और एक आपको ध्यान रखना है, जब आप भगवान को देखेंगे ना तो सब याद करो आप कि भगवान कमर पे हाथ रखे खड़े हैं, अपने भक्त के लिए खड़े हैं, भक्त तो चला गया कब का, अभी भी खड़े हैं, क्योंकि भगवान ने भक्त को वादा किया था कि यस मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पर। भगवान ने नहीं पूछा खड़ा रहूँगा लेकिन कब तक खड़ा रहना है वो तो बोलना कम से कम, वो नहीं पूछा भगवान ने। और आप भगवान का दर्शन करते में सोचना कि भगवान कमर पे हाथ रखे क्यों खड़े हैं, तो उसका भी शास्त्रार्थ अपने आचार्य अर्थ बताते हैं। भगवान अपने भक्तों को कह रहे हैं कि भव सागर जो है बहुत गहरा है, उसमें सब लोग डूबते ही डूबते हैं, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो भव सागर में डूब ही जाता है वो, लेकिन जो मेरे पास में आता है वो भव सागर कमर तक हो जाता है, इससे आप आसानी से आप तैर के जा सकते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। जो दिखा रहे देखो इधर तक ही है, आप आराम से जा सकते हैं, और उसके आगे भी हमारे आचार्यों ने भगवान ने बात बताई है, वत्स पदम, हाँ उसके बाद में भगवान की सेवा करेंगे ना, भगवान के भक्तों के मर्जी में आ जाओगे आप, भगवान के मर्जी, भगवान के भक्तों के प्रिय हो जाओगे, तो क्या होगा, वो कमर तक भी नहीं रहेगा, वो इतना सा गड्ढा बनेगा जो बछड़े के पैर से बना हो और उसमें पानी हो, तो आप कैसे उसको पार करेंगे, पार करने की जरूरत क्या है, चलते रहो अपने आप पार हो जाएगा, मतलब वो इतना छोटा सा है कि आप अपना एक कदम डालेंगे तो वो ऐसे बहुत सारे गड्ढे निकल जाएंगे उसमें। तो वही जो सागर है जो पंडरपुर के भगवान को देखने से यहाँ तक हो जाता है, वही जो सागर है वो इतना सा हो जाता है, एक बछड़े के पैर का जो चिन्ह है उसमें पानी भरने के बाद वो कितना होता है, उतना सा हो जाता है। जिसको आप सहजता से लांग के वैकुंठ में जा सकते हो। ऐसी कृपा है भगवान की। और कोई प्रश्न है
तो जो
बोलो।
कुंडलिक जो मुचकुंद जी है, फिर वो भगवान कृष्ण इस युग में जो आए थे उसके बाद तुरंत कुंडलिक के रूप में आए कि वो दूसरे और
किसी? नहीं नहीं, अगले अगले उसी युग की बात है ये। ज्यादा द्वापर में ही भगवान मुचकुंद को मिले थे और द्वापर में ही भगवान पुंडलिक को मिलने आए हैं। तो इट्स लाइक क्विक, तुरंत। भगवान उसी अवतार में है अभी, भगवान उसी अवतार में, उनका अवतार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ, तो जो अभी हमारा ध्यान तभी होता है तो हम लोग तुरंत आ सकते हैं ना वापस जन्म लेके। भगवान की इच्छा है तो आ सकते हैं। और अगर आप इस पर श्रद्धा की बात है, तुकाराम जी स्वयं कहते हैं कि चैतन्य देव स्वप्न आले और दर्शन दिया और मुझे दीक्षा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम को दीक्षा दिया है, तुकाराम जी स्वयं उसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन बहुत उसमें वाद विवाद लोग करते हैं, मानते नहीं, ये सब ऐसा सच नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे चैतन्य देव के स्वप्न में, चैतन्य देव तुकाराम के स्वप्न में आए तो तुकाराम जी का संप्रदाय जो है वो गौड़ी संप्रदाय हो गया ना। लेकिन तुकाराम जी जिस विभाग में रहते थे उस विभाग में मराठी भाषा बोलते थे, तो सारे संप्रदाय के तत्व जो हैं उन्होंने मराठी अभंग के रूप में प्रस्तुत किए, इसलिए वो लगता है कि दूसरा संप्रदाय है। मंत्र का भी नाम दिया, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, बीज मंत्र। तो वही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी ब्रांच है वो। डायरेक्टली हमारी चैतन्य महाप्रभु, चढ़ गोस्वामी, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे शाखा में नहीं है वो, दूसरी शाखा है। तुकाराम जी से यहाँ से आई है। लेकिन जब भी समझो इसका वाद निर्माण होता है तो भी कभी भी इस वाद में मत पड़ना, कभी भी नहीं पड़ना, क्योंकि इस वाद को यश प्राप्त करने से, अपयश प्राप्त करने से, दोनों में से कोई लाभ नहीं है। कोई जरूरत नहीं ना। अल्टीमेटली हमारा पॉइंट ये है कि तुकाराम जी की शिक्षा और हमारी शिक्षा, इसमें कोई भेद नहीं है। हमारी शिक्षा जो है वो व्यक्तिवादी है, भगवान को व्यक्ति मानती है। हमारी शिक्षा वैष्णवों की सेवा में मान निकलती है। हमारी शिक्षा जो हम पढ़ते हैं उसमें भगवान के नाम की महिमा है, सब कुछ, धाम की महिमा, नाम की महिमा, सेवा की महिमा, सब उसके अंदर है। सेम थिंग तुकाराम महाराज जी बताते हैं। उनका ऑडियंस अलग है, उनका भाषा अलग है, उनका तरीका अभंग का है और डिफरेंट लाइफ है उनका, बस सब कुछ नहीं। और कुछ? हाँ, उसके कई इंटरप्रिटेशंस है। युग 28 सवितवरी उबा, वो एक्चुअली उसका एक्चुअल अर्थ ऐसा है कि युगे 28, इसका अर्थ 28 युग खड़ा नहीं है, वो 28वां युगा मदे तो उबाए। कृष्ण भगवान कभी आए? विवस्वान यानी सूर्य, उनके पुत्र है मनु, उसको कहते हैं वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण आए। इसलिए आप जब गर्ग संहिता पढ़ेंगे ना तो कई बार बताते हैं, वो राक्षस को शाप देते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं तू गधा बन जा, तू बछड़ा बन जा, तू ये बन जा। तो फिर वो कहते हैं माफ़ करना महाराज जी, माफ़ करना, क्षमा करना। तो कहते ठीक है, वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब हमारे श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो तुम गधा बनना, वहाँ गधा तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे। ऐसा आपको कई बार वर्णन आएगा। तो वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। तो मराठी में अगर उसका इंटरप्रेट करेंगे तो त्या 28वें युगामध्ये ते उभे राहिले कमरेवर हात ठेवून।
युगे 28 असं म्हणतात, हां,
युगे 28
विटेवर
उभा,
28च मराठीत आपण सप्तमी विभक्ती,
28व्या युगात, युगामध्ये ते उभे राहिले। तर त्याचा जो मूळ अर्थ आहे तो असा नाही आहे की ते 28 युगेपर्यंत वाट पाहत राहिले, नाही, ते त्या संध्याकाळी आले, रात्रीत ते त्यांना भेटले। त्याचा अर्थ असा नाही होत की ते अनेक युग उभे राहिले तिथे। गोष्ट सांगते अशी की संध्याकाळी ते आले, तेव्हा हे आपल्या आईवडिलांना झोपू घालत होते, म्हणजे शयन करत होते, आणि शयन केलं आणि त्यांची भेट झाली भगवंताची. तो किती तास उभे राहिले? एक दोन तीन तास उभे राहिले असतील कदाचित मॅक्सिमम. याचा अर्थ योगी 28 उभे राहिले नाही आहेत, पण तो त्याचा इथे डेट आहे. डेट आज कशी डेट आहे? 25 फेब्रुवारी 2023 तशी ती डेट आहे योगी 28 अष्टमेशती कलियुगस्य प्रथम संध्यायाम. ती पूर्ण डेट आहे आपली एक.
हां,
वीट.
हाँ,
उसकी भी कहानी बताना भूल गया. वो ईट, ईट कौन थी? ईट तो ईट का कहानी ऐसा है, जो इस पर फेंकी ना ईट, उस पर खड़े रहो तो उस पर खड़े हो गए भगवान. तो वो ईट का कहानी ऐसा है कि एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर. अब वृत्रासुर राक्षस जो था वो, उसकी एक और लंबी कहानी है वो कैसे राक्षस बना. वो चित्रगुप्त था. वो चित्रगुप्त, वो एक बार शंकर जी को पार्वती के गोद में देकर हंसा. पार्वती जी को गोद में थी और शंकर जी उसको गोद में लेकर विरक्त सन्यासियों को प्रवचन कर रहे थे विरक्ति के विषय पे. जैसे अभी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरी गोद में बैठी थी, आपको कैसा लगेगा? ये क्या कथाकार का क्या क्या दिया है? और सभी सता उनको विरक्ति के बारे में बता रहे हैं, इतनी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर. तो चित्रगुप्त जी आकाश में चला रहे थे तो हंस पड़े, मतलब ऐसे उपरोधिक भाव से नहीं, एकदम अप्रिशिएटिव मूड में. बोले कितने महान है देखो, ये अपनी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर भी विरक्ति का विषय बोल सकते हैं, और विरक्ति भी है, ऐसा कोई आसक्ति नहीं है उनके अंदर, ये उनका भाव था. लेकिन पार्वती जी को फिर भी अच्छा नहीं लगा कि हमको देखकर ये हंसता है, तो शाप दिया तो राक्षस बन जा. तो वो ना आराम से अपने विमान से उतरा, नीचे आया, प्रणाम किया, बोला धन्यवाद माता, आपके मुख से शाप या आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद ही आशीर्वाद है. तो पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा भक्त है, इतना शाप दे रहे हो राक्षस बनने का, फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं मुझे. तो शंकर जी बताते हैं कि ये वैष्णव जन है. हाँ, स्वर्गेशु अपितुल्येशु, स्वर्गेशु अपितुल्य नरकेशु, कि इनको स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, कहीं भी रखो, ये भगवान की सेवा ही करते रहेंगे, कभी उनको फर्क नहीं पड़ता है. शाप दो, वरदान दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ये शंकर जी ने अपनी पत्नी को बताया कि जिसको शाप दे रहे हो ना, वो वैष्णव है, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो वो वृत्रासुर बना. अब वृत्रासुर बन के उसने इतना हाहाकार मचा दिया, इंद्र बहुत हैरान हो गया. तो इंद्र ने जाके कंप्लेंट किया, भगवान क्या करे इसको, क्योंकि तो था वैष्णव ना, परम वैष्णव, इतना भयंकर था वो व्यक्ति, राक्षस रूप में भी इतना वो तेजस्वी था. तो इंद्र को तो रहना नहा नहीं गए, राक्षस भी मेरे सामने इतना तेजस्वी दिख रहा है, ऊपर से तप कर रहा है, और तप करके इंद्र बनना चाहता है, तो वो परेशान हो गए, विष्णु के पास गए. विष्णु ने कहा, दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ वज्र तुम उपयोग करोगे तो उसको मार सकते हो. तो इंद्र निर्लज्ज होकर दधीची के पास गया, महाराज मर जाओ आप, आपकी हड्डी चाहिए. तो दधीची ने इंद्र की पुकार सुनकर अपना हड्डी नहीं दिया, भगवान की सेवा में काम आएगा, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग दिया. उसकी हड्डियों को मिलकर, वो पावरफुल हड्डियाँ थी, तप तप की हुई हड्डियों, उससे वज्र बना गया, और उस वज्र का प्रभाव, वज्र का आघात किया गया, और वृत्रासुर का वध हुआ. तो वृत्रासुर का जब वो तप करने बैठा था, तभी किसी का वध नहीं करना चाहिए, ऐसा युद्ध का नियम है. कितना भी शत्रु हो, तप करने बैठा होगा, निशस्त्र होगा, जमीन पर होगा, रथहीन होगा, तो उसका वध नहीं करना चाहिए. फिर भी इंद्र ने ये दधीची का वज्र बना हुआ जो वज्र है, वो उसको तप की अवस्था में, उसका तीन सर थे उसके वृत्रासुर के, वो कट कर दिए. जो जमीन पे गिर गए तो भी वो हा 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 हंस रहा था, उसको कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन उसको शाप दिया कि तुम ईंट बनोगे, इंद्र को शाप दे दिया, तुम ईंट बन जाओगे और जंडीरा वन में गिर जाओगे. तो वो ईंट बना इंद्र, और इंद्र बन गया. तो इंद्र रोया बहुत, भगवान के पास गया, भगवान मुझे बचाओ, मैं तो ईंट बना दिया उसने मुझे. तो भगवान ने कहा, कोई बात, चिंता मत करो, कुछ ही समय में मैं वहाँ पर आऊँगा और मेरे चरण का स्पर्श आपको दूंगा, फिर आपका उद्धार करूँगा. तो कर्म धर्म संयोग से वो ईंट हमारी पुंडलिक के घर पर थी, भगवान को कृपा करनी थी ना. हाँ, तो इसी ईंट को भगवान के ओर फेंका, और भगवान जब खड़े हो गए तो इंद्र का भी उद्धार हो गया. विटेवरी उभा, तो विट 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 के ऊपर नाम बना है, विठल या विठू. ओके, हाँ, जय जय श्री राधे. श्याम।